नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष उस महान अध्याय और गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था।
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बंगाल के कई लेखकों और कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्राण फूंकने वाले गीत लिखे। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कठिन समय में ऊर्जा और आशा का संचार किया।
माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का सपना देखने का साहस दिया।
सरकार ने कहा है कि भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 के मुकाबले 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगभग 24 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार असमानता को दूर करने, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और निष्पक्ष आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया है कि हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है, हालांकि कुछ उड़ानों को रद्द या उनके समय में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रशासन ने बताया कि उड़ान में व्यवधान को कम करने और यात्रियों के निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया जा रहा है। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। परामर्श में कहा गया है कि हवाई अड्डे तक और हवाई अड्डे से मेट्रो सेवा, बस और टैक्सी जैसे कई सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधित दिशा निर्देशों से संबंधित पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री नायडू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे रही है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सीसाकेट और उबोर रत्सथानी प्रांतों में थाईलैंड की सेना ने आज सुबह विवादित सीमा पर हवाई हमले किए। थाईलैंड की सेना ने बताया कि कंबोडिया के सैनिकों ने गोलीबारी की। जवाबी हमले में थाईलैंड के एक नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। थाईलैंड ने कहा है कि उसके विमानों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से 817 किलोमीटर लंबी सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है। पुरुष हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज रात 10:30 बजे से केप टाउन के हार्टलेवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने कल हुए पहले मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। भारत के शालानंद लाकड़ा, आदित्य लालगे, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल किए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत विश्व रैंकिंग में 7वें जबकि दक्षिण अफ्रीका 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।